भगवते वासुदेवाय ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते कृतं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंध 8 अध्याय 11 अध्याय का शीर्षक है इंद्र द्वारा असुरों का संहार। श्लोक संख्या है 5 बोर्ड पर लिखा हुआ है, बट इससे पहले 4 श्लोक और हैं, मैं पढ़ूंगा और उसका अनुवाद पढ़ूंगा, तो फिर हम 5वें श्लोक का उच्चारण करेंगे। हतो सुरा प्रत्युपलब्ध चेतसा परस्य पुंसः परानुकंपया जग्नुर्भृशं शक्र समीरनादयस् संहिता पुरा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात भगवान हरि की परम कृपा से इंद्र वायु इत्यादि सारे देवता जीवित हो गए। इस प्रकार जीवित होकर सारे देवता उन्हीं असुरों को बुरी तरह पीटने लगे जिन्होंने पहले उन्हें परास्त किया था। श्लोक संख्या 2। वैरोचनाय संदब्धो भगवान पाक शासन जब सर्वाधिक शक्तिशाली इंद्र क्रुद्ध हो गए और उन्होंने महाराज बलि को मारने के लिए अपने हाथ में वज्र ले लिया, तो सारे असुर हाय हाय चिल्लाकर शोक करने लगे। श्लोक संख्या 3। वज्रपाणि स्तमोहेदं तिरस्कृत्य पुरस्थितं मनस्विनं सुसंपन्नं विचरन्तं महामृधे गंभीर सहिष्णु तथा लड़ने के साथ सामान से बलिमान सुसज्जित बलि महाराज उस विशाल युद्धस्थल में इंद्र के सामने घूम रहे थे। सदा हाथ में वज्र लिए रहने वाले इंद्र ने बलि महाराज को इस प्रकार तिरस्कार पूर्वक ललकारा। संख्या 4। नटवन लोढ मायाभिर माये सानोज जीशसी जित्वा बालान निबद्धाक्षा नटो हरति तद्धनम्। इंद्र ने कहा, रे धूर्त, जिस प्रकार ठग बच्चे की आंखों पर पट्टी बांधकर कभी कभी उसका धन चुरा ले जाता है, उसी प्रकार तुम यह जानते हुए कि हम सब ऐसी माया शक्तियों के स्वामी हैं, अपनी कोई माया शक्ति दिखलाकर हमें परास्त करना चाहते हो। और आज ये 5वां श्लोक जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। आरुक्षन्ति मायाभिर् शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की आरुक्षन्ति, जो व्यक्ति जो उच्च लोकों को जाना चाहते हैं, माया भी ही तथा कथित योग शक्ति या विज्ञान के भौतिक विकास द्वारा उत्सी स्त्री संति, ये ऐसे झूठे प्रयासों से मुक्त होना चाहते हैं ये जो व्यक्ति दिवं स्वर्ग लोक को तान ऐसे लफंगों तथा गुंडों को दस्युं ऐसे चोरों को विधनोमी मैं नीचे गिराता हूं। अज्ञान मूर्ख पूर्वस्मात पिछला च भी पदात पद से अधः नीचे। कृपया अनुवाद दोहराइएगा नीचे। उन मूर्खों तथा धूर्तों को जो माया या यांत्रिक साधनों से उच्च लोकों तक पहुंचना चाहते हैं या जो उच्च लोकों को भी पार करके वैकुंठ लोक या मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, मैं उन्हें ब्रह्मांड के सबसे निम्न भाग में भिजवा देता हूं। तात्पर्य, विभिन्न लोगों के लिए निस्संदेह भिन्न भिन्न लोक हैं, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, सतोगुणी पुरुष उच्चतर लोकों को जा सकते हैं, किंतु जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, उन्हें उच्च लोकों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। दिवम शब्द उच्च लोकों का द्योतक है, जो स्वर्ग लोक कहलाता है। स्वर्ग लोक के राजा इंद्र को अधिकार है कि यदि कोई बद्ध जीव समुचित योग्यता के बिना निम्न लोकों से उच्च लोकों को जाने का प्रयास करे तो वह उसे नीचे धकेल दे। चंद्रमा तक जाने का आधुनिक प्रयास निम्न लोगों द्वारा कृत्रिम यांत्रिक साधनों से स्वर्ग लोक जाने का ही प्रयास है। यह प्रयास सफल नहीं हो सकता। इंद्र के इस कथन से लगता है कि जो यांत्रिक साधनों द्वारा, जिसे यहां पर माया कहा गया है, उच्च लोकों को जाने का प्रयास करता है, उसे ब्रह्मांड के निम्न भागों में नरक लोक में भेज दिया जाता है। उच्च लोकों में जाने के लिए पर्याप्त सद्गुण चाहिए। तमोगुणी पापी पुरुष तथा मदिरापान मांस भक्षण तथा अवैध यौनाचार में लगा व्यक्ति कभी भी यांत्रिक साधनों से उच्च लोकों में प्रवेश नहीं करेगा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य
चल रहा है अभी श्रीमद् भागवतम के आठवें स्कंध में, कि जो लोग नियमित रूप से आते हैं उन्हें पता होगा कि अभी जो है वो समुद्र मंथन होने के बाद जो अमृत था वो भगवान ने छल से देवताओं में बांट दिया, तो जो असुर थे वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, इनके ऊपर आक्रमण कर दिया, देवताओं के ऊपर। और देवता जो हैं वो उनसे हार भी गए। अभी अभी अमृत पिया है, अभी अभी असुरों ने आक्रमण कर दिया और देवता हार भी गए। आप समझ सकते हैं देवताओं की स्थिति कि अभी 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 आप पहले इसी से पहले जो चैप्टर था उसमें अमृत पिया, उसके अगले चैप्टर में उन्होंने आक्रमण कर दिया या देवताओं को हरा। अगर भगवान नहीं आते बीच बचाव करने के लिए तो बुरी तरह से, अभी आप देखें अभी पिछले वाले श्लोक में हमने पढ़ा है कि जो देवताओं को जो है फिर दोबारा से जीवित कर दिया, देवता भी दूसरी तरह से जीवित हो गए। तत्पश्चात भगवान श्री हरि की परम कृपा से इंद्र वायु इत्यादि सारे देवता जीवित हो गए। तो असुरों की जो शक्ति है बहुत अधिक है, और सिर्फ अभी नहीं है कि ऐसे उन्होंने देवताओं को हरा दिया, अभी जो है इसमें इंद्र जो है इस चैप्टर में असुरों का संहार कर देते हैं, जितने खास करके बलि महाराज का और बाकी सारे असुरों का। परंतु हम अभी देखेंगे कुछ ही चैप्टर के बाद दोबारा जो है वो बलि महाराज इंद्र को परास्त करके स्वर्ग छीन लेते हैं और फिर भगवान को आना पड़ता है। अब देखिए अभी फिर भगवान आए, अभी भगवान चले गए, अब उस समय क्या होता है कि जब बलि महाराज आक्रमण करते हैं स्वर्ग पर तो इंद्र बिना लड़ाई किए हुए भाग जाता है कि ये लोग अभी बहुत शक्तिशाली हैं। तो एग्जीक्यूटिव हेड होने की वजह से भगवान को हर समय देवताओं की रक्षा के लिए आना पड़ता है। आप सब देखिए कि भगवान पूरे प्रशासन के हेड हैं, भगवान विष्णु को पालन करने की जिम्मेवारी किसकी है, भगवान विष्णु की। वो देवता के माध्यम से ये काम करते हैं, ये करवाते हैं। तो जब भी कोई समस्या होती है तो या देवता अगर डील नहीं कर पाते इमीडिएटली भगवान को कूदना पड़ता है। हालांकि ये एक देवता चूंकि भगवान के भक्त भी हैं तो उनमें एक खासियत ये भी है कि वो छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो सीधे भगवान को अप्रोच कर लेते हैं, बट असुर ये काम नहीं करते। तो देवता और असुर में यही एक अंतर है प्रमुख, नहीं तो उपदेश बड़े बड़े असुर भी बहुत बड़े बड़े उपदेश देते हैं, देवता भी बड़े उपदेश देते हैं, बट ये जो है कि देवताओं में ये गुण हमेशा रहता है कि जैसे कोई बड़ा खतरा हुआ वो भगवान के सामने जाकर के जो है हाथ जोड़ने लगते हैं कि हमारी रक्षा करिए या हमें संकट से निकालिए, बट असुर में ये नहीं होता। असुर को अपनी शक्ति पर ज्यादा विश्वास होता है और देवताओं को अपने शक्ति पर तो विश्वास होता है, और साथ में जब उनको लगता है कि काम खराब हो जाएगा तो आगे है कोई संभालने के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ कि जो प्रभुपाद जी जो ये पूरा श्लोक है, पिछले चार श्लोक हैं, बड़ा युद्ध के बारे में, जो पिछला भी चैप्टर था वो युद्ध के बारे में था, ये वाला जो चैप्टर है ये भी युद्ध के बारे में ही है पूरा कि कैसे उनका संहार होता है। तो हम देखते हैं कि जो इतिहास में खास करके जो बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, देवासुर संग्राम एक बार नहीं कई बार हुआ है, और ये फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग है कि देवताओं और असुर में हमेशा लड़ाई होती रही है। और देवता और असुर हैं कौन, एक ही पिता के संतान है। देखिए मां अलग है पर पिता एक ही है इनके, एक ही पिता के संतान है। तो राइवलरी जो दुश्मनी सबसे ज्यादा कहां होती है, अपने लोगों के बीच में, बाहर के लोगों से इतनी दुश्मनी नहीं होती, पर अपने लोगों में भारत पाकिस्तान देख लीजिए, अभी भी युद्ध का माहौल है देश में, है ना। क्या वजह है कि एक ही संतान, एक ही बाप के दोनों बेटे, मतलब एक ही देश से निकला हुआ है ना भारत पाकिस्तान, और दोनों में बहुत बुरी तरह से जो है विद्वेष है लड़ने में। तो यहां भी देखिए दोनों एक ही पिता के संतान है और दोनों में द्वेष है बहुत ज्यादा। और हम पीछे चले जाए अगर महाभारत में आप देखिए एक बहुत बड़ा, इस मेरे ख्याल से हिस्ट्री का बहुत बड़ा युद्ध था वो भी, और सबसे बड़े युद्धों में से एक था। उसमें किसके किसके बीच में लड़ाई है, कौन थे दोनों, चचेरे भाई हैं दोनों, और दोनों में इतनी भयानक युद्ध हुआ है
जैसे मोहन बाबू जी अभी बता रहे थे पिछले अपने लेक्चर में कि 1,66,20,000 सैनिक मारे गए, 1,66,00,000। आप सोचिए क्या कितनी पॉपुलेशन थी, कितने लोग मारे गए होंगे 1,00,000,000। और ज्यादा सेनाएं किसके पास थी? असुरों के साथ, भगवान के साथ नहीं था। असुरों के साथ ज्यादा लोग थे, भगवान के साथ कम लोग थे। और वही सिचुएशन आप देखो, भगवान कृष्ण और जरासंध में जब युद्ध होता है तो जरासंध कितनी कितनी सेनाओं को लेकर आता है, और भगवान जो है जितनी अक्षौहिणी का वध महाभारत में जो पूरे युद्ध में हुआ था उतनी सेना जरासंध एक बार में लेकर आता था। 17 अक्षौहिणी 20 अक्षौहिणी सेना एक बार लेकर आता था, और भगवान वहां बैठे बैठे उनको मारते थे। तो भगवान ने सोचा इतनी दूर जाएंगे मारने के लिए, ढूंढना पड़ेगा राक्षसों को, यही बैठे रहो ये लाएगा घुमा घुमा के। तभी छोड़ते थे भगवान जरासंध को, हर बार छोड़ देते थे कि यही लेके आएगा सबको और हम यहां बैठे बैठे इसको मारेंगे। तो भगवान ने जब पहली बार मारने लगे भगवान ने मना किया, ना ये हमारा बहुत बड़ा काम करेगा, अभी सारे राक्षसों से को पृथ्वी से ले आएगा घूम करके और हम यही बैठे बैठे मारेंगे इसको। और वही क्या भगवान को वहां बैठे बैठे जो है इतने सारे राक्षसों का मना कर, ये बहुत बड़ा संग्राम था उसमें। और हम दूसरे राम रावण युद्ध में भी देखो, वो बहुत बड़ा संग्राम था, क्योंकि भगवान ने जब पहले ही किस्त में मारा था तो 14,000 राक्षसों को भगवान ने मार दिया था रावण उसमें, भगवान राम ने, ये पहले किस्त में फर्स्ट इन, जब पहली बार भगवान गए विश्वामित्र के आश्रम पहली बार मारना शुरू किया तो 14,000 राक्षसों को एक साथ मार दिया था। हमें ज्यादा पता नहीं है इसके बारे में कि इतने सारे राक्षसों को मारा होगा। राम रावण युद्ध भी बहुत इतिहास का बहुत भयानक युद्ध है, श्री राधा राधिका नंद भगवान की, तो इस तरह इतिहास में देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, बहुत बड़े बड़े युद्ध। और इस इन युद्धों में जीता कौन है, कौन जीता है? फाइनली जो है वो राइटियस में अर्थात धार्मिक, मतलब जो धर्म के रास्ते पर चल रहे लोग होते हैं वही जीतते हैं। महाभारत युद्ध में जब इतने लोग मरे थे तो उसमें 24,165 लोग बच भी गए थे, इतने लोग मरने में से जितने जो जितने सैनिक थे उसमें से 24,165 लोग बचे थे पूरे युद्ध में। ये कैलकुलेशन मेरा नहीं है, ये कैलकुलेशन युधिष्ठिर जी का, जो उन्होंने महाभारत में जब उनसे पूछा गया था कि कितने लोग बचे हैं तो उन्होंने बोला 24,165 लोग बच गए। तो 24,165 लोगों में से जो है वो ज्यादातर लोग पांडव पक्ष के बचे थे, कौरव पक्ष के भी कुछ लोग बचे थे पर पांडव पक्ष के ज्यादा लोग बचे थे। तो इसमें जो हर व्यक्ति को कुछ में, जैसे बलि महाराज ने, अब यहां इंद्रदेव ने इस चैप्टर में जो है वो बलि महाराज और असुरों को हरा दिया, किसके बल पर? भगवान के बल पर, पहले भी और यहां भी। अब बलि महाराज जब हराएंगे इंद्र को आगे आने वाले चैप्टर, किसके बल पर? ब्राह्मणों के बल पर, ब्राह्मणों की तपस्या के बल पर। क्योंकि जब वो हार जाते हैं तो भृगुवंशी ब्राह्मण जो है उनके लिए तपस्याएं करते हैं और उनको शक्ति प्रदान करते हैं। तो सारी लड़ाई किसकी है? तपस्या की है, ना तपस्या की, ना तपस्या करने वाला, तपस्या करने वाला। इवन अब बलि महाराज जब स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तो किसकी वजह से हारे? अदिति की तपस्या की वजह से। अदिति ने तपस्या की, भगवान वामन प्रकट हुए और उन्होंने फिर उनको उसके साथ छल कर दिया। तो ये पूरे सीक्वेंस में हम देखते हैं कि जहां कहीं भी इस तरह की जो स्टोरी आती है इस युद्ध में, और इस बड़ी ये जो महाभारत कालीन युद्ध था, जैसे कि बताते हैं कि इसमें और हर युद्ध में जितने भी बड़े बड़े युद्ध होते हैं, हालांकि धार्मिक युद्ध होता है कहने के लिए, पर उसमें काफी सारे लोग अधर्म का सहारा भी लेते हैं। क्योंकि अगर ये अधर्म का, जैसे महाभारत युद्ध का एग्जाम्पल ले लीजिए, हमने सुना है कि महाभारत युद्ध में भगवान ने उसको मरवाया, उसको मरवाया, सुना है ना आपने, इसको मरवाया। तो क्यों मरवाया? क्योंकि जब दृष्टद्युम्न और भीष्म देव में युद्ध के नियमों को लेकर समझौता हो रहा था और सारे योद्धा और सारे लोग बैठे हुए थे उस राजभवन में, तो भगवान कृष्ण ने एक बात कही थी वहां पर। भगवान ने कहा था कि पांडव, मैं ये वचन देता हूं कि पांडव अपनी ओर से युद्ध के नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे, परंतु अगर आपने नियम का उल्लंघन किया तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने भीष्म पितामह को संबोधित करके कहा था कि अगर पहल पांडवों की तरफ से हुई तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। सॉरी, हाँ, कौरवों की तरफ से हुई तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। आप देखिए कि पहल किसने करी, ज्यादा गलतियां करी पांडवों ने, पर पहल किसने करी, कौरवों ने। क्या तर्क था भगवान का कि एक व्यक्ति अधर्म को स्थापित करने के लिए जब धर्म का सहारा लेना चाहता है तो हम धर्म को स्थापित करने के लिए अधर्म का सहारा क्यों न लें? आप समझ रहे बात को कि हम धर्म को स्थापित, अगर यह व्यक्ति जीत गया तो इतिहास को अपने हिसाब से लिखवाएगा, तो इसीलिए धर्म को क्या बोलते हैं पराजित ना होने देने के लिए हमें भी अधर्म का सहारा लेना पड़ेगा। और जब पहल उन्होंने कर दी तो फिर भगवान ने कहीं पर कोताही नहीं बरती कि जहां जिसको जिस समय जो जिस चीज की जरूरत पड़ी उस समय भगवान ने वो काम करके दिखाया। तभी कृष्ण महाभारत के नायक थे, हीरो थे, जबकि हीरो वाला कैरेक्टर आप देखो तो भीष्म पितामह का है पूरे महाभारत में, पर महाभारत के हीरो बन नहीं पाए भीष्म पितामह अपने छोटी सी गलती की वजह से। पर कृष्ण ने कितनी सारी गलतियां करवाई और तब भी महाभारत के हीरो बने रहे, चाहे वो भीष्म पितामह का वध हो या द्रोण का वध हो या कर्ण का वध हो, हर जगह भगवान ने जो है जब कर्ण कह रहा है कि मैं निहत्था हूं और अर्जुन रथ पर है तो आप इसको सिखा रहे हो कि मारो, और अर्जुन भी वो हो गया, अर्जुन नहीं मारना चाहता था, अर्जुन को लगा क्या कर रहा हूं मैं, तो भगवान ने उसको बोला तू बच्चा है अभी, ये एग्जैक्टली यही लाइन बोला भगवान ने, तू बच्चा है अभी, तू धर्म को क्या जानता है, अधिकार खोकर बैठ जाना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है, कि ये बैठना नहीं है, मैं जो कह रहा हूं वो धर्म है। भगवान ने क्या कहा, मैं जो कह रहा हूं वो धर्म है, तुम जो सोच रहे हो धर्म नहीं है अर्जुन का, जो मैं कह रहा हूं वो करो वो धर्म है, क्योंकि भगवान कहे वचन का पालन करना बड़ा धर्म है, रेडर धन की मॉरलिटी और इन चीजों को धारण करना, भगवान की आज्ञा का पालन करना ज्यादा बड़ा धर्म है। भगवान ने जब युधिष्ठिर से बोला कि महाराज युधिष्ठिर बोलिए कि अश्वत्थामा मारा गया, तो महाराज युधिष्ठिर एकदम हो गए, ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे बोलूं, अश्वत्थामा तो मारा नहीं गया। तो भगवान ने भीम को इशारा कर दिया और भीम ने वहीं से गदा फेंकी और अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारा गया, कहा युधिष्ठिर को बोलिए धर्मराज जी अश्वत्थामा मारा गया। तब भी युधिष्ठिर के मन में संदेह था और इस संदेह की वजह से उन्होंने बोला अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा, अब दोनों बात बोल दी, कुंजर बोलते हैं हाथी को, कि अश्वत्थामा मारा गया नर या हाथी पता नहीं, जैसे ऐसा बोला उनका रथ पृथ्वी पर आ गया, उनका रथ आकाश में उड़ता था, उनका रथ पृथ्वी पर कभी आया नहीं, इसलिए नहीं आया कि उन्होंने आधा झूठ बोला, लोग समझते इसलिए नहीं आया, इसलिए आ गया कि भगवान की बातों पर संदेह किया, भगवान की बातों को एज इट इज फॉलो नहीं किया। जो आपके रक्षक हैं, जो आपके मार्गदर्शक हैं, जो आपके गाइड हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा करो तो करो, कोई इफ नहीं कोई बट नहीं। यही बात भगवान कर्ण के संबंध में कह रहे हैं, कह रहा जब अपना जीवन खतरे में है कर्ण तो तुझे धर्म याद आ गया,
जब तुझे अपना जीवन खतरे में है तो तुझे धर्म याद आ रहा है। इससे पहले भी तो चीजें थी, तब भी तू वहां पर था। जब भीम को विष दिया गया, जब लाक्षागृह में आग लगाई गई, तू भी था उसका हिस्सा। जब सभा भवन में द्रौपदी के साथ जो व्यवहार हुआ उसमें तू भी था। तब धर्म की रक्षा की याद नहीं आई, और जब आज अपना जीवन खतरे में है, युद्ध के मैदान में है, तो कह रहा धर्म युद्ध करो। क्यों करें? भगवान के सामने किसी की नहीं चलती, और ना कोई भगवान से आर्गुमेंट कर सकता है कि जब तुझे अपना जीवन खतरे में दिखाई दे रहा तो कह रहा धर्म युद्ध करो। तो भगवान ने कहा कि मार इसको, यहीं पर मार, अर्जुन को बोला यहीं मार इसको, तब मारा। हमें पता होना चाहिए एज ए डिवोटी, क्योंकि हम कह रहे हाँ ठीक कह रहे हो आप, तो कृष्ण ने बड़ी गलती की थी। भगवान गलती कर ही नहीं सकते, भगवान गलती कर ही नहीं सकते, ये अच्युत है, अच्युत से कोई गलती नहीं होती। सवाल ही नहीं उठता भगवान गलती करेंगे। आप सब कहने का मतलब यह है कि ये देवासुर संग्राम में भी हम देखते हैं जो इंद्र है, और उसमें जो उसमें पहले आप देखो जैसे वृत्रासुर का ही प्रसंग आया था। वृत्रासुर के प्रसंग में वृत्रासुर इंद्र को बोलते हैं कि तुम वो वज्र चलाओ, उससे मैं मारा जाऊंगा। तो इंद्र को जितने भी हथियार इससे पहले इंद्र ने फेंके थे वो वृत्रासुर मुंह में ही खा गया था, जितने भी हथियार फेंके थे। अब उसको लग रहा है वज्र ही ना खा जाए, एक ही का बचा हुआ मेन वेपन, अगर ये भी इसने काम कर दिया तो हो गया अपना। तो लेकिन वृत्रासुर को विश्वास है कि भगवान ने ये वज्र बनवाया है, इसीलिए मैं इससे मारा जाऊंगा। पर इंद्र को अभी भी हिचक है, पता नहीं मारा जाएगा कि नहीं मारा जाएगा। तो सारी शक्तियां और सारी चीजें किससे आ रही हैं? भगवान से। चाहे जो वो शक्तियां का आप उपयोग करो या दुरुपयोग करो, जो शक्ति है वो एक शक्ति का जो सोर्स है वो एक ही व्यक्ति है। हिरण्यकश्यपु में अत्याचार करने की शक्ति भी भगवान दे रहे हैं, और प्रहलाद की बचने की शक्ति भी भगवान दे रहे हैं। ये दोनों सोर्स एक ही है, वो अत्याचार कर रहा है और भगवान सुरक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि अब जैसे अब बताते हैं ना, जैसे ये लाइट एक ये लहर, इसमें से आप दोनों चीजें कर सकते हो, हीट भी कर सकते हो और कोल्ड भी कर सकते हो। सोर्स तो एक ही है, जैसे मर्जी कर लो, तो सोर्स तो भगवान ही है सबके। तो उस सोर्स ये देवता और असुर में जो युद्ध हुआ था वो बहुत भयानक युद्ध था, और एक बार नहीं कई बार हुआ है, कई बार, और कंटिन्यूअसली चलता रहता है कंटिन्यूअसली। और ये जो देव लोगों का जो सृजन है, आप हालांकि जो ये जो असुर लोग हैं वो हमारे से ऊपर के लोगों में रहते हैं, आपको पता है ये? नहीं, ये भूवा लोक है। इस भूवा लोक में हमारे से जो ऊपर का लोक है, आप देखो देवता रहते हैं पृथ्वी लोक उस स्वर्ग लोक में, और जो दैत्य के लोग रहते हैं वो रहते हैं महातल में, धनु और दानव, धनु और दिति के पुत्र, दिति के पुत्र ये भी हैं, पर दिति के कुछ पुत्र और धनु वो भी कश्यप की पत्नी थी, उनके पुत्र भी कहां रहते हैं? महातल में। तो महातल से निकल करके वो बिल स्वर्ग है, वहां से निकल करके वो देवताओं के पास जाएगा लड़ने के लिए संभव है टेक्निकली, आप समझ रहे बात को? तो वो क्या है, वो भी अंतरिक्ष में रहते हैं और देवता भी उसी के ऊपर रहते हैं, वो भी अंतरिक्ष में। ये अंतरिक्ष में कौन कौन रहता है उसमें? बहुत तरह के लोग रहते हैं, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, भूत, प्रेत और यशोर, इतने सारे लोग इस भूवा लोक में रहते हैं। जैसे पृथ्वी लोक में अलग अलग देश है, अलग अलग, आप इसको इस तरह से समझो एग्जाम्पल से, तो भूवा लोक के अंदर भी इसी तरह से यक्षों का लोक है, सिद्धों का लोक है, गंधर्वों का लोक है, किन्नरों का लोक है, विद्याधर का लोक है, तो इनका भी लोक है। तो वहां से देवलोक में अप्रोच करना बड़ा आसान है, आप समझ गए? जैसे आप कितनी भी दूरी है, बट यहां से आप टेक्निकली इसको समझो कैसे ये लोग अप्रोच कर लेते हैं एकदम से, पर इनको सहायता की जब जरूरत पड़ती है तो ये लोग जो हैं वो रसातल से, सॉरी रसातल से लेके आते हैं, महातल में तो कद्रू जो सर्पों की मां है और उनके बेटे रहते हैं, रसातल से लेके आते हैं क्योंकि रसातल में देवतियों का निवास है। असुरों और देवतियों में थोड़ा अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, हे एक ही प्रजाति पर फिर भी थोड़ा अंतर है। जैसे सर्पों में और नागों में अंतर है, जो 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 ये सर्प हैं ये ज्यादातर जो हैं ये महातल में रहते हैं, पर नाग कहां रहता है, पाताल के अंदर, पाताल में, मतलब वो नागों का लोक है जिसके राजा वासुकी हैं। और यहां कद्रु और उसके तक्षक कालिया जैसे लोग सर्प रहते हैं वहां पर, तो थोड़ा सा अंतर है, प्रजाति में अंतर है, ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं क्योंकि नाग के बहुत सारे फन होते हैं। बस इसी तरह से दैत्य में, दैत्य जो है जनरली कश्यप ऋषि की पत्नी थी धनु, तो धनु के पुत्र हुए दानव, दानव कहलाए हो, और अदिति के पुत्र हुए आदित्य जो कि कश्यप ऋषि की पत्नी जिसके पुत्र 12 पुत्र हैं जो कि आदित्य देवता बने हुए हैं। तो ये कश्यप ऋषि की सब अलग अलग पत्नियां हैं, उनकी एक पत्नी थी विनीता जिससे सारे पक्षी पैदा हुए, जो गरुड़ उनकी उन्हीं के पुत्र हैं, ये गरुड़ भी इन्हीं का भाई है, सब सब आपस में भाई भाई हैं। पर युद्ध के मैदान में देखिए कैसे सत्ता के लिए कैसे संघर्ष होता है। तो इसमें जो है वो प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, जिस परपट में बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति स्वर्ग पर सीधे सीधे आर्टिफिशियल रूप में जाकर के कब्जा नहीं कर सकता, या स्वर्ग में जाकर के कोई व्यक्ति रह नहीं सकता अपनी मर्जी से, जब तक वो पूरी तरह से व्यक्ति पायस है और उसके योग्य है उसको स्वर्ग में नहीं रहने दिया जाएगा। और ये अधिकार किसको मिला होता है, इंद्र को, कि स्वर्ग में किसको रखना है और किसको नहीं रखना है। आप कहोगे रखना अपनी मर्जी से रखेगा, नहीं, क्वालिफिकेशन सेट किया हुआ है, ये क्वालिफिकेशन है जिसका वो व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा, और जिसका ये क्वालिफिकेशन नहीं है वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। अगर कोई जबरदस्ती जाने का प्रयास करेगा तो इंद्र अपने पैरों से जो है लात मार करके उसके नीचे नरक लोक में भेज देते हैं। कोई एग्जाम्पल है इसका, हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु, सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र थे, उनके पिता थे त्रिशंकु। महाराज त्रिशंकु को विश्वामित्र ने अपने तपस्या के प्रभाव से, उन्होंने विश्वामित्र को प्रसन्न कर दिया, और विश्वाम बहुत बड़ी कथा है, तो विश्वामित्र ने उनको कहा कि मैं तुम्हें इस सशरीर स्वर्ग भेज दूंगा। कहा महाराज इससे बड़ी बात क्या होगी, और विश्वामित्र भी कोई साधारण ऋषि नहीं है। तो विश्वामित्र ने क्या किया, अपने तपोबल से जो है त्रिशंकु को ऊपर भेजना शुरू कर दिया। पर जैसे ही वो इस वायुमंडल से बाहर निकलकर भुवा लोक में प्रवेश हुआ तो भुवा लोक में भी चला गया। भुवा लोक के वायुमंडल से जैसे ही बाहर निकलने लगा कि स्वर्ग लोक का जहां से वो सीमाएं शुरू होती है, इंद्र की नजर पड़ गई, क्योंकि इंद्र के शरीर में हजारों आंखें हैं, हजारों आंखें हैं, मालूम है आपको, नहीं, हजारों आंखें हैं इंद्र के शरीर में, हजारों। और ये श्राप दिया है किसने, गौतम ऋषि ने, अलग कहानी है, मैं इसका इसका बोल ही करूंगा। तो और इसी के बारे में कहा जाता है कि उसके हजारों आंखें, हजारों आंखों से देखते हैं इंद्र। तो उनकी नजर पड़ गई कि ये समुद्र की जो सॉरी स्वर्ग की सीमा में कोई प्रवेश कर रहा है, और उन्होंने फौरन लात मारा वहां से त्रिशंकु नीचे। जैसे ही नीचे गिरने लगा, विश्वामित्र को कहा ये नीचे कैसे गिर रहा है, उसने और पंपिंग करी अपनी तपस्या को और वो कर दिया, तो वो ऊपर और वो नीचे मारे, वो ऊपर से लात मारते ही ऊपर तपस्या से फेंक रहे थे। विश्वामित्र की तपस्या का बल इतना था कि त्रिशंकु नीचे नहीं आ पा रहे थे, और इंद्र की शक्ति का इतना शक्ति इतनी है कि उनको एंटर नहीं करने दे रहे थे स्वर्ग के अंदर। फिर बड़ा खतरनाक स्थिति बन गई, ब्रह्मा जी आ गए, बड़ा भयानक स्थिति बन गई। तो अब लड़ाई हो गई ईगो की। इंद्र ने कहा मैं इसको एंटर नहीं करने दूंगा, ब्रह्मा जी के कहने के बावजूद। विश्वामित्र ने कहा कि मैं, वो भी उन्होंने ब्रह्मा जी कहने के बावजूद कहा मैं इसको नीचे नहीं उतरने दूंगा अपनी तपस्या के बल पर। तो फिर क्या हुआ, एक अलग सा लोक बनाया गया कि भाई ठीक है इस व्यक्ति को अब कैसे करेंगे, क्योंकि वो पायस राजा था, उसकी गलती जो भी थी पर पायस राजा था, तो उसको अलग सा लोक बना के दिया गया उसके लिए, कि वहीं पर एक लोक का निर्माण कर दिया। तो त्रिशंकु आज तक वहीं पर है, न ऊपर जा रहा है न नीचे आ रहे हैं, पता नहीं कब जाकर उनकी मुक्ति होगी, भगवान जाने। तो हालांकि जो है बताते हैं कि बाद में उसका एक समाधान निकाला गया कि वो नारियल हम देखते हैं नारियल, वो उसी का एक प्रतिफलन है कि उसमें ये दो आंखें और एक मुंह आपको दिखाई देता है, वो त्रिशंकु का है एक्चुअली में। ये एक अलग कथा है कि बाद में विश्वामित्र मान गए कि ठीक है इसका आप उद्धार कर दो ब्रह्मा जी ने कहा, तो लेकिन आप इसका कुछ ऐसे मेमोरेबल बना दो कि ये व्यक्ति हमेशा इसका प्रयोग हो। तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसा चीज बना देते हैं कि हर पूजा में इसका विधान होगा। तो फिर उसको जो है वो नारियल के रूप में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो तभी वो नारियल में आप देखोगे तीन चिन्ह बना होता है, वो यही है। हालांकि पता नहीं पूरी कहानी तो मुझे नहीं पता, बहुत बड़ी कहानी है, परंतु कि ये इस तरह की कहानी है कि वो, तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो स्वर्ग में जाने के लिए भी क्वालिफिकेशन है। प्रभुपाद लिखते हैं कि कोई स्वर्ग में, जैसे आधुनिक वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि मैं स्वर्ग में चला, जो स्वर्ग में चले जाएंगे कि क्या चंद्रमा पर पहुंच गए, तो प्रभुपाद कहे धूर्त लोग हैं। प्रभुपाद ने जब ये पहले भी कहा था कि ये धूर्त लोग हैं, चंद्रमा पर कोई नहीं गया, तो प्रभुपाद के कई शिष्य छोड़ के चले गए, प्रभुपाद को कई डिसाइपल पर प्रभुपाद को छोड़ के चले गए, कि उनको लगता था हमारे देश ने इतना बड़ा काम किया है कि चंद्रमा तक जा चुका है और स्वामी जी कह रहे हैं कि चंद्रमा पर गए नहीं। तो कई लोग तो इस बात से इतने ज्यादा वो हर्ट हो गए कि उन्होंने मूवमेंट छोड़ दिया, पर प्रभुपाद ने कहना जारी रखा कि मूर्ख लोग हैं, कोई नहीं गया चंद्रमा पर। और अभी आप देख लीजिए, अभी थोड़े टाइम पहले नासा भी कह रहा कि उन्हीं का वो कह रहा कि हम शायद चंद्रमा पर गए नहीं है, किसी और जगह पर उतर गए थे। आप समझ रहे, घूम फिर के बाप वहीं पर आ गई कि हमको भी लग रहा है कि सर गलत जगह पर जो है लैंड कर गए थे, हम मून पर नहीं गए थे। कि वो प्रभुपाद कह रहे कि वहां पर अलग शरीर की आवश्यकता होती है, अलग तरह की चीजें हैं, और मून जो है, मून प्लैनेट स्वर्ग का हिस्सा है। ये स्वर्ग जो है वो केवल एक इंद्र की राजधानी अमरावती नहीं है खाली, स्वर्ग में भी कई देश हैं। आप समझ गए, स्वर्ग जो है आप समझ लीजिए पृथ्वी की तरह, उसमें भी जैसे कई कई देश हैं जैसे पृथ्वी के ऊपर, तो स्वर्ग में भी कई देश है। जैसे इंद्र का अलग लोक है, सूर्य का अलग लोक है, चंद्रमा का अलग लोक है, वरुण का अलग लोक है, यमराज जी का अलग लोक है, अब सब अलग अलग लोक है और सबका लोकेशन भी अलग अलग है। ऐसा नहीं कि एक साथ सब है। और इंद्र की का जो स्वर्ग है, जो इंद्र जहां पर रहते हैं, जो अमरावती है इंद्र की राजधानी, वो मेन है स्वर्ग। पर इसका मतलब ये नहीं है कि स्वर्ग एक ही, क्योंकि इंद्र और जो स्वर्ग की जो सुविधाएं हैं वो इतनी अधिक हैं कि हम डिवोटी भी सुन लेगा तो कहेगा भाई स्वर्ग ही अच्छा है, उधर छोड़ भगवान का चक्कर कर दो, पता नहीं वहां पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, यहां तक पहुंच जाएंगे। सच बता रहा हूं आप, इतने ज्यादा सुविधाएं हैं वहां पर, वो क्या है श्रेष्ठ जीवन है। भौतिक सुविधाएं बहुत हैं, इंद्रिय तृप्ति की बहुत सुविधाएं, वहां 60 करोड़ अवसर आए हैं। कितनी 60 करोड़, और ये अप्सराएं कहां से निकली हैं? समुद्र मंथन से। ये सारी अप्सराएं निकली हैं समुद्र मंथन से, और यही समुद्र मंथन की 60 करोड़ अप्सराएं स्वर्ग लोक में हैं। और कोई भी व्यक्ति जो कि इस भौतिक जगत से स्वर्ग लोक में जाता है, उन अप्सराओं पर उसका भी अधिकार होता है। ऐसा नहीं खाली इंद्र का अधिकार है, 60 करोड़ अप्सराओं पर इंद्र का अधिकार है, नहीं, हर वो जीव जो यहां से निकल करके स्वर्ग लोक तक पहुंचता है, उस सारी अप्सराओं पर, उस स्वर्ग लोक के उन सारी चीजों पर उस व्यक्ति का भी अधिकार होता है, जो जिस पर इंद्र का अधिकार होता है। आप समझ गए, ये स्वर्ग वहां मोतियों की, मैं इसमें अभी आएगा, अभी प्रभुपाद जब इसका वर्णन करते हैं अपने उसमें परपक में 15वें चैप्टर में आप पढ़ेंगे, जो चौराहे बने हुए हैं मणियों से बनी हुई हैं स्वर्ग लोक की, ये चौराहे हैं, इतने सुंदर सुंदर प्रासाद है, सब मणि से बना हुआ है। कहीं कोई जो है वो भूखा नहीं है, कहीं किसी के चेहरे नहीं लटके, किसी को बीमारी नहीं लगी हुई है, वहां जो भी कोई खाता है वो मल नहीं बनता, खून में कन्वर्ट हो जाता है, वहां मल त्यागने की व्यवस्था नहीं है। आप समझ रहे, बड़े बहुत ज्यादा सुविधा है, बहुत सुख है, सुविधा है, सुख संपन्नता है वहां पर। इसीलिए जो व्यक्ति, और ऐसा नहीं कि वहां भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, वहां भी भगवान के बारे में ज्ञान है, परंतु सुविधाएं इतनी होती है कि भगवान के बारे में तो लोग भूल ही जाते हैं। जैसे मान लो जो बड़े तबके के लोग हैं जिनके पास चार्टर विमान है, बड़े बड़े कंपनियां पर, उनके बच्चों को आप बोलो कि आप भक्ति करो, सुनेगा वो? सवाल ही नहीं उठता। तो ये तो उस सुख के सामने कुछ भी नहीं है। कल्प वृक्ष के पेड़ है, कोई खाना बनाने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे गर्म समोसे आ जा, आ गया। पनीर पकौड़े आ जाओ, आ गया पनीर पकौड़ा। इतनी सारी सुविधाएं जो है वो इंद्र के लोक में, परंतु फिर भी प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, सब क्या है, बहुत तुच्छ है। तुच्छ इसलिए है कि जब तक ये इंद्र हैं, मान लीजिए अभी इंद्र का समय कितना है, बहुत कम रह गया, क्योंकि अगले इंद्र वेट कर रहे हैं। इसके बाद जो है सावर्णी मनवंतर आएगा, इस ये वैवस्वत मनवंतर के बाद सावर्णी मनवंतर आने वाला है, अष्टमा जो मनवंतर होगा। तो सावर्णी मनवंतर में बलि महाराज इंद्र बनेंगे। नेक्स्ट इंद्र का घोषणा भगवान पहले कर चुके हैं, ही इज इंद्र इन वेटिंग, ऑलरेडी वेटिंग चल रहे हैं वो। जैसे ना प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाता है, पर शपथ ग्रहण होता है 25 जुलाई को भारत में, मालूम है आपको? भारत में हर प्रेसिडेंट का जो शपथ ग्रहण है 25 जुलाई को ही होगा। अभी जो इलेक्शन आएगा आप देख लीजिएगा, नेक्स्ट 25 सब उसका इलेक्शन पहले हो जाता है। जैसे अमेरिका में जो राष्ट्रपति बनता है उसका इलेक्शन 20 जनवरी को होता है, 20 जनवरी को शपथ लेता है। आज से नहीं, 200 वर्षों से परंपरा है, वो 20 जनवरी को ही शपथ लेगा। इलेक्शन पहले हो जाता है, जीत पहले जाता है, 2-3 महीना पहले, पर शपथ कब लेगा? 20 जनवरी को। अब 20 जनवरी 2017 को शपथ लेगा नेक्स्ट प्रेसिडेंट अमेरिका का। इसी तरह से इंद्र महाराज जो बलि महाराज हैं, नेक्स्ट इंद्र इन वेटिंग है। भगवान पहले घोषणा कर चुके हैं कि जो बलि है वो इंद्र बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने इंद्र का राज छीन लिया, इंद्र बन गए वहां पर, बट इंद्र सुस्वर्ग में टिक नहीं पाए, नहीं टिक पाए, देवता नहीं भगा पाए, तो भगवान को निकालना पड़ा वहां से, भाई हट यहां से। बलि महाराज किसने हटाया? भगवान ने हटाया, क्योंकि तुमने जबरदस्ती स्वर्ग पर कब्जा कर लिया है। तो जबरदस्ती यहां कोई नहीं रह सकता, केवल वही व्यक्ति रह सकता है जो यहां एंटाइटल है, जो क्वालिफाइड है। तो क्वालिफाइड व्यक्ति स्वर्ग में जाने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, ऐसा नहीं कि स्वर्ग में जाने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। प्रभुपाद से एक बार पूछा था भक्तों ने कि क्या आपके सारे भक्त भगवान के धाम चला जाएंगे? प्रभुपाद ने कहा नो, मोस्ट ऑफ देम विल गो टू द हेवनली प्लैनेट्स, मोस्ट ऑफ देम। प्रभुपाद ने बोला मोस्ट ऑफ देम विल गो टू हेवनली प्लैनेट्स, अधिक से अधिक भक्त जो है कहां जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि हम किसी न किसी कामना से भक्ति तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नियम पालन ये वो सब कुछ ड्यूटी वर्सिप, पर कामना जो साथ में चल रही है। तो देवता कौन होते हैं? सकाम भक्त। देवता भी कौन होते हैं? सकाम भक्त। तो जो ये जो ट्रांसडेंटलिस्ट है, जो फेल ट्रांसडेंटलिस्ट है, उसको कहां भेजा जाता है? स्वर्ग लोक में। आपकी बहुत अच्छी भक्ति है तो दोबारा भगवान वैष्णव परिवार में जन्म दे देंगे, बहुत अच्छे टॉप लेवल की भक्ति है, नहीं तो सीधे स्वर्ग में जाएंगे। तो इस बात से भी सावधान हो जाना चाहिए। नहीं, अगर सुख देख के अगर आप प्रसन्नचित हो रहे हो तो ठीक है, क्या प्रॉब्लम क्या है? तो वहां छीन्य पुण्य मर्द लोकम विशंति भी कह रहे हैं भगवान, फिर जब पुण्य छीन हो जाएगा तो इंद्र लात मार के फिर नीचे भी फेंक देते हैं, चल भाई तेरा काम खत्म, तो इतने साल के लिए था, निकल रहा यहां से, अब जा फिर नीचे, तो नीचे आ जाना पड़ता है दोबारा से। तो कहने का मतलब है कि उसमें जाने के लिए भी, स्वर्ग में जाने के लिए भी जो है वो एक क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो जैसे उसमें पूछा, मान लीजिए जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण अगर याजिक ब्राह्मण है और सारे कर्मों को ठीक ठीक करता है और वर्णाश्रम धर्म को ठीक प्रकार से फॉलो करता है तो उसका स्वर्ग जाना निश्चित होता है। इसी तरह से जो क्षत्रिय युद्ध लड़ते हुए अपना शरीर त्याग देता है उसका स्वर्ग जाना निश्चित होता है। अब क्या करें भगवान अर्जुन को? हत्वा वा प्राप्सी स्वर्गम, जित्वा वा भोक्षसे महिम, तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। कि अगर तुम अर्जुन मारे गए तो स्वर्ग तो तुम पर तुम्हारा अधिकार है ही है। हत्वा वा प्राप्सी स्वर्गम, तुम मर करके भी स्वर्ग तो प्राप्त कर ही लोगे, और जीतवा वा भोक्से मही, और जीत गए तो सारा पृथ्वी का राज तुम्हारा है। इसीलिए क्या करो, युद्ध करो। यही बात जो है धृतराष्ट्र पूछते हैं युधिष्ठिर से कि इसमें जो इतने लोग मारे गए हैं वो सब कहां गए, उनकी क्या गति हुई? 1,66,20,000 लोग मारे गए, उनकी गति क्या हुई? ये स्त्री पर्व में वर्णन है, आप तो भी पढ़ सकते हो महाभारत के, महाभारत में स्त्री पर्व चैप्टर है, तो स्त्री पर्व में ये वर्णन आता है। तो वो धृतराष्ट्र जो है पूछते हैं प्रश्न कि कहां गए सब, इनकी गति क्या हुई, मेरे बेटों का क्या हुआ? तो युधिष्ठिर महाराज जो है उत्तर देते हैं, कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने, सुनिए महाराज धृतराष्ट्र, जिस व्यक्ति ने बहुत प्रसन्नता पूर्वक युद्ध को अपना ड्यूटी समझकर, और जो है युद्ध को ड्यूटी समझ करके शरीर छोड़ा, प्रसन्नता पूर्वक युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ा, वो सारे जो है वो स्वर्ग लोक को चले गए। स्वर्ग लोक में भी कह रहे हैं इंद्र के लोक में गए अमरावती में, और कह रहे हैं कि आपके बेटे भी अमरावती चले गए, कि उन्होंने बहुत दृढ़ता से, बहुत जो है निर्भयता से उन्होंने युद्ध किया। फिर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति डिप्रेशन में, कि मतलब बहुत क्या युद्ध में लगा दिया, जबरदस्ती कर दिया, ये लोग राजा लड़ते रहते हैं, जब देखो ऐसे सैनिक अभी भी होते हैं, फिर ऐसे जो लोग मरे वो लोग गंधर्व लोग चले गए, दुर्गति किसी की नहीं हुई। जो बता रहा हूं आपको क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये सब वर्णाश्रम धर्म को फॉलो कर रहे थे। फिर कहा कि जो लोग जो भागते हुए चले गए, युद्ध मैदान से भाग गए, पीठ दिखा के भागे और तब मरे गए, तो कह रहे हैं विश्वनाथ वो लोग गुह्यक के लोग चले गए। गुह्यक लोग भुवन लोग के ऊपर है, मतलब वो स्वर्ग में नहीं गए बट ऊपर के लोग में चले गए। क्योंकि ऐसे लोगों का भी, ऐसा नहीं कि कोई नरक में गिर गया या किसी की बहुत दुर्दशा हो रही, पशु बन गया, वैसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि इन लोगों ने जो है, और कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा उसमें बहुत क्या बोलते हीरो की तरह जिसने लड़ा और बहुत फियरलेसली युद्ध किया और शत्रु की तरफ बिल्कुल प्रसन्न आक्रमण करते हुए मारा गया खूब प्रसन्नता से, कह ऐसा लोग सीधे ब्रह्मा जी के लोक में गए। ऐसे सारे योद्धा कहां गए? ब्रह्मा, जो कि इस भौतिक जगत का टॉप मोस्ट लोक है, सीधे ऋषि महाराज कह रहे हैं सीधे ब्रह्म लोक में उनका जो है उनका वो उत्पन्न हुए हैं। और जो है कि कह रहे हैं कि बहुत जो बाहर खड़े युद्ध का जब मैदान जो युद्ध हो रहा था, जो देखने वाले आसपास खड़े थे जिन्होंने युद्ध को देखा, या मान लो बाहर जा रहे हैं और यहां गोली चल रही है, उनको गोली लग गई तो उनका क्या हुआ? आप समझ रहे, भाला यहां फेंक रहे हैं, तीर यहां फेंक रहे हैं, लगा बाहर जाकर के युद्ध के मैदान के बाहर, तो उसका क्या हुआ? ये प्रश्न पूछ रहे हैं। कह रहे ऐसे लोग जो है वो कुरु वर्ष में पैदा हुए। कुरु वर्ष पृथ्वी पर ही एक और वर्ष है, जैसे भारत वर्ष है, हरि वर्ष है, भद्रास वर्ष है, कुरु वर्ष है, ऐसे 9 वर्ष और भी हैं। तो इस 9 वर्ष में कुरु वर्ष में उपसर्ग पैदा हुए, तो वो ऐसे लोग जो है कुरु वर्ष में पैदा हुए, जो बारिश में जो बाइक देखने वाले, जिनको अचानक से लग गई, यानी गोली किसी और को मारी लगी किसी और को, फिर ऐसे लोगों का भी जो है अच्छे जगह पर जन्म हो गया कुरु वर्ष में। तो इस तरह कहने का मतलब यह कि बता रहे हैं कि ये एक योग्यता है लोगों में जाने की। तो प्रभुपाद यहां बता रहे हैं कि स्वर्ग वो लोक में जाने के लिए भी योग्यता है, कि आपको स्वर्ग लोक में भी अगर जाना है तो उसके लिए योग्य होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो मर्जी जहां से मर्जी चले जाएंगे, ऐसे तो कोई स्वर्ग पर जो है हमेशा क्या बोलते हैं अधिकार कर लेगा। तो स्वर्ग में जाने के लिए भी व्यक्ति को कह रहे हैं कि जिस मात्रा में सत्वगुण का विकास होता है उसी मात्रा में वो उतनी ऊंची स्वर्ग लोक में चला जाता है। व्यक्ति तपस्या कर करके सत्वगुण को डेवलप करके, प्रभुपाद यहीं पर इसी में आगे लगते हैं कुछ में, कि जनह लोक, महालोक और तपह लोक में भी जा सकता है। आप समझ लीजिए, स्वर्ग लोक के ऊपर जो है जो लोग हैं महाजनह तपह और सत्यम, तो ये महाजनह तपह तक जा सकते हैं, सत्यम में एंट्री नहीं है, पर तपह लोक तक जा सकते हैं, जनह लोक तक जा सकते हैं, केवल अपने अंदर सत्वगुण का विकास करके और सत्वगुणी होकर के। जैसे कह रहा है कि जो यज्ञ करने वाला स्पिरिचुअल पावर से कोई व्यक्ति जो है, ये भी स्वर्ग लोग, ये सब भी स्वर्ग लोग कहलाते हैं एक तरह से। क्योंकि आप देखो जब पूरे प्लैनेटरी सिस्टम को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है तो नीचे के सातों लोगों को क्या बोला जाता है, पाताल लोग, और ऊपर के लोगों को स्वर्ग लोग, और पृथ्वी बीच में, तो कह रहा है वो भी स्वर्ग के ही हिस्से हैं। जो तपस्वी बड़े बड़े तपस्वी लोग हैं तपोलोक में रहते हैं, जो ब्रह्मा के सारे पुत्र हैं वो जनह लोक में रहते हैं, बड़े बड़े महर्षि लोग उसमें महालोक में रहते हैं। तो ये लोग इनमें भी हम जैसे कोई बड़े बड़े बहुत बड़ा सिद्ध है मान लीजिए, तो कई बार जो अपनी मृत्यु को चुन सकता है, जैसे कई ऐसे विशेषवादी और कुछ लोग होते हैं, तो ये लोग ज्यादा से ज्यादा इन्हीं लोगों में अपना ट्रांसफर कर पाते हैं। मैक्सिमम डेस्टिनेशन यही है इनका कि आप इन्हीं लोगों में अपने जो है वो ट्रांसफर कर पाते। कह रहे कि भक्त इसमें बता रहा है कि बिना दैवी गुण को विकसित किए हुए कोई देवताओं के लोक में एंटर नहीं कर सकता, सिंपल है। और उसमें देवता के गुण में जैसे वरुण लोक जो है वो भी समुद्र, वो भी स्वर्ग लोक का हिस्सा है, वरुण कहां है, वो पानी के अंदर है। संयमनी यमराज जी का लोक जो पितर लोक है वो भी स्वर्ग का हिस्सा है, कहां पर है वो, नीचे गर्भोदक समुद्र के पास, वो भी स्वर्ग का हिस्सा है। जैसे एक ही राजा के कई, एक मकान बॉम्बे में भी है, एक मकान लंदन में भी, और एक मकान नई दिल्ली में भी है, हो सकता है, तो वो भी स्वर्ग के हिस्से हैं ये सब। क्योंकि ये स्वर्ग के जितने भी ये जो लोग हैं, जो पालक हैं, जिनको भगवान ने बिठाया हुआ है अलग अलग जगह पर, तो ये जहां भी रहते हैं वो लोग स्वर्ग कहलाता है और स्वर्ग का हिस्सा है, वो भी स्वर्ग का एक्सटेंशन है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि जितने भी जो जैसे यज्ञकर्ता ब्राह्मण का स्वर्ग जाना निश्चित है, उसी तरह से धर्म युद्ध में मारे जाने वाले लोगों का भी स्वर्ग में जाना निश्चित है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कह रहे हैं कि जो वर्णाश्रम धर्म का प्रमुखता ठीक ठीक ढंग से पालन कर पाता है पूरे जीवन भर, उसका भी स्वर्ग में जाना निश्चित है। क्योंकि उसको इतनी क्वालिटी, उसकी इतनी योग्यता आ जाती है कि अपने आप को स्वर्ग में ट्रांसफर कर सकता है। तो प्रभुपाद ये पूरे चैप्टर उसमें जो ये परपट है उसमें यही बता रहे हैं कि स्वर्ग लोक में कोई जबरदस्ती नहीं जा सकता, आर्टिफिशियली नहीं जा सकता, कोई जबरदस्ती नहीं पहुंच सकता, कोई जबरदस्ती चला भी जाएगा तो उसको वहां से निकाल दिया जाएगा। इवन बलि महाराज जो कि बहुत पावरफुल बन गए, ब्राह्मणों की तपस्या के बल पर उन्होंने स्वर्ग पर अधिकार भी कर लिया, स्वर्ग में राज भी कर लिया, और स्वर्ग में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी कर लिया, फिर भी भगवान ने उनको स्वर्ग लोक से बाहर निकाल दिया। क्यों? कहा कि अभी तुम्हारी योग्यता स्वर्ग लोक में रहने की नहीं है। इसीलिए स्वर्ग लोक में जाने के लिए भी प्रभुपाद करें कि तब सतोगुण की आवश्यकता पड़ती है, कुछ तपस्याओं की आवश्यकता पड़ती है, कोई ऐसे सतोगुण स्वर्ग में जो है वो नहीं जा सकता। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, नीताय गौर प्रेमानंदे। हालांकि देर हो चुकी है, अगर किसी का एक आध प्रश्न है तो ले सकते हैं। यस,
हम दो लोगों के बीच में कोई आर्गुमेंट हो जाती है।